एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब पर बात करने वाले हैं, रामचंद्र गुहा के गांधी युगांतरकारी वर्ष।
हाँ, ये किताब गांधी जी के जीवन के उन अहम 33 सालों पर फोकस करती है, मतलब 1915 में जब वो भारत लौटे, वहां से लेकर 1948 में उनकी हत्या तक।
बिल्कुल, और ये वो साल थे जिन्होंने सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का नक्शा बदल दिया।
सही कहा। और देखिए, गुहा का जो नजरिया है इस किताब में वो मुझे काफी दिलचस्प लगा। वो गांधी को ना तो कोई देवता बना देते हैं, ना ही पूरी तरह से खारिज करते हैं।
हाँ, मतलब एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश की है ना।
बिल्कुल, एक जटिल इंसान के रूप में दिखाया है, एक विचारक, रणनीतिकार, समाज सुधारक, और हाँ, अपनी कमियों और विरोधाभासों के साथ भी।
किताब यही सवाल उठाती है कि कैसे दक्षिण अफ्रीका से लौटा एक वकील देखते ही देखते एक वैश्विक प्रतीक बन गया जिसने इतने बड़े साम्राज्य को चुनौती दी।
और सिर्फ साम्राज्य को ही नहीं, अपने ही समाज की जो गहरी समस्याएं थीं उनसे भी जूझे।
सही, ये सिर्फ राजनीतिक आजादी की कहानी नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जिसके लिए राजनीति और नैतिकता, पब्लिक लाइफ और निजी जीवन के जो सत्य के प्रयोग थे वो सब जुड़े हुए थे।
हाँ, गुहा ये भी दिखाते हैं कि शायद उनके लिए हिंदू मुस्लिम एकता या अस्पृश्यता मिटाना, ये राजनीतिक आजादी से भी ज्यादा जरूरी मुद्दे थे।
ये बात तो है, और यही जटिलता उन्हें आज भी इतना प्रासंगिक बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी इस यात्रा को समझना।
तो 1915 में गांधी जी भारत वापस आए। दक्षिण अफ्रीका में वो सत्याग्रह का सफल प्रयोग कर चुके थे, मतलब वो कोई नौसिखिया नहीं थे।
हाँ, अनुभव तो था उन्हें।
बिल्कुल, लेकिन भारत की स्थिति अलग थी, चुनौतियां अलग थीं। उनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने एक सलाह दी।
अच्छा, क्या सलाह थी?
उन्होंने कहा कि एक साल तक देश घूमो, देखो सुनो, पर बोलो मत, आंखें और कान खुले रखो, मुंह बंद।
वाह, मतलब पहले देश को समझो।
हाँ, और गांधी जी ने बिल्कुल वैसा ही किया। तीसरे दर्जे में रेल से पूरे देश का दौरा किया, भारत की जो जमीनी हकीकत थी उसे करीब से देखा समझा। ये एक तरह से उनकी भारत की पुनः खोज थी।
और इसी दौरान अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम भी स्थापित किया।
हाँ, जो आगे चलकर उनके विचारों और कार्यों की, कह सकते हैं, एक तरह की प्रयोगशाला बना।
फिर उनके शुरुआती हस्तक्षेप शुरू हुए। गुहा इन्हें प्रयोग कहते हैं, है ना?
सही, जैसे 1917 में चंपारण, बिहार में नील किसानों का जो शोषण हो रहा था उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, और ये भारत में सत्याग्रह का पहला बड़ा सफल प्रयोग साबित हुआ।
हाँ, चंपारण का जिक्र तो बहुत आता है।
उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई 1918 में, फिर खेड़ा सत्याग्रह भी उसी साल। गुहा इन घटनाओं को सिर्फ लिस्ट नहीं करते, वो दिखाते हैं कि कैसे गांधी इन संघर्षों के जरिए अपनी सत्याग्रह की तकनीक को भारतीय माहौल के हिसाब से ढाल रहे थे,
उसे बेहतर बना रहे थे।
मतलब ये उनकी रणनीति का विकास था एक तरह से।
बिल्कुल,
और इसी के साथ उनका कद भी बढ़ता गया, महात्मा के रूप में उनकी पहचान बनने लगी। लेकिन राष्ट्रीय पटल पर उनका असली उभार हुआ 1919 के बाद,
रॉलेट एक्ट के समय।
हाँ, अंग्रेज सरकार वो काला कानून ले आई थी, रॉलेट एक्ट,
बिना मुकदमे के किसी को भी जेल में डाल दो।
इसके विरोध में गांधी जी ने पहली बार पूरे देश में हड़ताल का आह्वान किया। ये बहुत बड़ा कदम था उस समय।
लेकिन फिर जलियांवाला बाग का वो भयानक हत्याकांड हो गया।
हाँ, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया।
और इसी माहौल में 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया।
अच्छा, और गुहा यहाँ खिलाफत आंदोलन से जुड़ने की बात पर क्या कहते? गुहा उसे गांधी का एक बहुत सोचा समझा रणनीतिक कदम मानते हैं। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का था, तुर्की के खलीफा की पदवी बचाने के लिए। गांधी ने उसे असहयोग से जोड़ा ताकि हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हो सके।
और इसका असर भी हुआ, लाखों लोगों ने अंग्रेजी सामान, स्कूल, अदालतें सब छोड़ दी, अभूतपूर्व एकता दिखी।
हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर 1922 में चौरी चौरा की घटना हो गई।
हाँ, जहां भीड़ ने गुस्से में पुलिस थाने में आग लगा दी और कई पुलिस वाले मारे गए।
और गांधी जी ने फौरन आंदोलन वापस ले लिया। इसकी आलोचना भी बहुत हुई, लोग कहने लगे कि आजादी बस मिलने ही वाली थी।
हाँ, कई नेताओं ने भी आलोचना की थी।
हाँ।
गुहा इसे किस तरह देखते हैं?
गुहा इसे गांधी की अहिंसा के प्रति जो अटूट प्रतिबद्धता थी उसका प्रमाण मानते हैं। उनके लिए साधन यानी अहिंसा, साध्य यानी आजादी जितना ही पवित्र था। उन्होंने माना कि शायद देश अभी अहिंसक संघर्ष के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, और इसे अपनी हिमालय जैसी भूल भी कहा। ये फैसला दिखाता है कि उनके लिए नैतिक सिद्धांत कितने ऊपर थे, राजनीतिक फायदे से भी ज्यादा।
ये उनके चरित्र का एक बहुत बड़ा पहलू है। आंदोलन के बाद उन्होंने फिर रचनात्मक कार्यक्रम पर ध्यान दिया है ना?
हाँ, खादी को बढ़ावा देना, ग्रामोद्योग, अस्पृश्यता मिटाने का अभियान, उनके लिए ये सिर्फ सोशल वर्क नहीं था, ये स्वराज की नींव तैयार करना था।
और फिर आया 1930 का नमक सत्याग्रह, डांडी मार्च। ये तो वाकई एक मास्टर स्ट्रोक था।
बिल्कुल, सोचिए, नमक जैसी रोजमर्रा की चीज, उसे साम्राज्यवाद के विरोध का इतना बड़ा प्रतीक बना देना, ये गांधी की रणनीतिक सोच का शिखर था।
और दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई।
हाँ, टाइम मैगजीन ने उन्हें मैन ऑफ द ईयर बनाया। गांधी अब सिर्फ भारत के नेता नहीं रहे, वो एक ग्लोबल फिगर बन गए थे। इसने दिखा दिया कि अहिंसा में कितनी ताकत हो सकती है।
लेकिन इसी दौर में एक और टकराव भी हुआ डॉक्टर अंबेडकर के साथ, गोलमेज सम्मेलन में।
हाँ, लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, वहां डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी। गांधी जी ने इसका जबरदस्त विरोध किया।
क्यों, उनका क्या तर्क था?
गांधी जी को लगता था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बट जाएगा। उनका मानना था कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म पर एक कलंक है और इसे हिंदुओं को ही मिलकर मिटाना होगा, अलग होकर नहीं।
अच्छा।
इसे रोकने के लिए उन्होंने पूना में आमरण अनशन शुरू कर दिया। आखिरकार 1932 में पूना पैक्ट हुआ, एक समझौता जिसके तहत दलितों के लिए अलग निर्वाचन की बजाय सामान्य सीटों में ही आरक्षण का प्रावधान किया गया।
गुहा इस टकराव को काफी गहराई से दिखाते हैं ना?
हाँ, वो इसे सिर्फ दो नेताओं का मतभेद नहीं मानते, वो दिखाते हैं कि ये भारतीय समाज के एक बहुत गहरे और दर्दनाक मुद्दे पर दो अलग अलग दृष्टिकोणों का संघर्ष था।
इसके बाद कुछ समय गांधी जी सक्रिय राजनीति से थोड़ा हटकर हरिजन कार्य और ग्राम सुधार में ज्यादा लगे रहे।
हाँ, लेकिन फिर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और भारत फिर एक मुश्किल स्थिति में आ गया।
कांग्रेस के सामने दुविधा थी कि एक गुलाम देश कैसे फासीवाद के खिलाफ लड़ रहे मित्र राष्ट्रों का साथ दे।
बिल्कुल, और जब अंग्रेजों ने भारत को पूरी आजादी का साफ आश्वासन नहीं दिया तो 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया, करो या मरो का नारा दिया।
ये उनका आखिरी और सबसे बड़ा जन आंदोलन था।
हाँ, और अंग्रेजों ने इसे पूरी ताकत से कुचलने की कोशिश की, गांधी जी समेत लगभग पूरा कांग्रेस नेतृत्व जेल में डाल दिया गया।
ये दौर उनके निजी जीवन के लिए भी बहुत कठिन था। पूना के आगा खा पैलेस में नजरबंद थे और वहीं उनके सचिव महादेव देसाई और फिर उनकी पत्नी कस्तूरबा जी का निधन हो गया।
बहुत बड़ी व्यक्तिगत क्षति थी उनके लिए।
युद्ध खत्म हुआ, आजादी पास नजर आने लगी, लेकिन साथ ही देश के बंटवारे का खतरा भी बढ़ने लगा।
गुहा दिखाते हैं कि इस दौर में कांग्रेस के बड़े फैसलों में गांधी जी थोड़े हाशिए पर चले गए थे। ऐसा लगता है नेहरू, पटेल जैसे उनके करीबी सहयोगी भी शायद अब ये मानने लगे थे कि सत्ता जल्दी पाने के लिए विभाजन एक कड़वी हकीकत है जिसे स्वीकार करना पड़ेगा। गांधी का अखंड भारत का सपना जैसे टूट रहा था।
और फिर विभाजन की वो त्रासदी हुई, कलकत्ता, बिहार, नोआखली, भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए।
हाँ, उस हिंसा ने गांधी जी को अंदर तक झकझोर दिया था।
और यही वो क्षण आता है जिसे गुहा गांधी का सबसे शानदार क्षण या फाइनेस्ट आवर कहते हैं, नोआखली का।
बिल्कुल, 77 साल की उम्र, वो अकेले उन हिंसा से भरे गांव में नंगे पैर घूम रहे थे, सिर्फ शांति की अपील करते हुए, एक अकेली फौज की तरह।
लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था।
हाँ, ये उनके नैतिक साहस की मिसाल थी, नफरत की आग बुझाने की कोशिश अकेले।
आजादी तो मिली लेकिन बंटवारे के गहरे जख्म के साथ। दिल्ली में उनके आखिरी महीने भी सांप्रदायिक शांति बनाने की कोशिश में ही बीते।
हाँ, और जनवरी 1948 में उन्होंने अपना आखिरी अनशन किया दिल्ली में शांति के लिए और भारत सरकार पर दबाव बनाने के लिए कि वह पाकिस्तान को उसका बकाया हिस्सा दें।
अनशन सफल रहा, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद 30 जनवरी 1948 को,
हाँ, प्रार्थना सभा जाते हुए नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। गुहा का मानना है कि शायद उनकी शहादत ने उपमहाद्वीप को एक बड़े गृह युद्ध की आग में जलने से बचा लिया।
ये तो उनकी जीवन यात्रा थी, बहुत उतार चढ़ाव भरी। अब थोड़ा उनके मूल दर्शन पर बात करते हैं। गुहा इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि गांधी के लिए राजनीति और निजी नैतिकता अलग चीजें नहीं थीं।
बिल्कुल नहीं थी। उनका मानना था कि सच्ची राजनीतिक शक्ति, जिसे वो स्वराज कहते थे, वो सिर्फ बाहरी आजादी से नहीं आती, वो अंदरूनी आत्मनियंत्रण और नैतिक शुद्धि यानी आत्मशक्ति से आती है।
इसीलिए उनके वो सारे प्रयोग चलते रहते थे, उपवास, खाने पीने के प्रयोग, ब्रह्मचर्य का पालन, चरखा चलाना।
हाँ, ये सब उनके लिए सिर्फ निजी अभ्यास नहीं थे, ये उनके सार्वजनिक जीवन को प्रभावी बनाने के साधन थे। उनके लिए राजनीति एक तरह से नैतिकता का ही विस्तार थी।
और सत्याग्रह, गुहा उसे निर्माण में विज्ञान, साइंस इन द मेकिंग कहते हैं, इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब ये है कि सत्याग्रह कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं था। ये सत्य और अहिंसा पर आधारित संघर्ष का एक तरीका था जो लगातार विकसित हो रहा था। गांधी उसे अलग अलग स्थितियों में आजमा रहे थे, सीख रहे थे, बदल रहे थे।
मतलब एक डायनामिक अप्रोच थी।
बिल्कुल, और इसमें जोर विरोधी को खत्म करने पे नहीं बल्कि उसके हृदय परिवर्तन पर था। ये सक्रिय था, सिर्फ शांति से बैठना नहीं था।
और एक और बहुत अहम बात, साधन और साध्य की पवित्रता का सिद्धांत, यानी मंजिल कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, रास्ता भी सही होना चाहिए।
हाँ, ये आज के समय में बहुत प्रासंगिक लगता है। गांधी का मानना था कि गलत तरीकों से हासिल किया गया सही लक्ष्य भी आखिर में बिगड़ जाता है।
और उनके लिए सामाजिक सुधार भी उतनी ही जरूरी थे, अस्पृश्यता मिटाना, सांप्रदायिक सद्भाव।
हाँ, उनका मानना था कि सच्ची आजादी तब तक आ ही नहीं सकती जब तक हमारा समाज अंदर से बटा हुआ है, अन्याय पर टिका है। राजनीतिक आजादी अधूरी है इसके बिना।
और उनकी वो सत्य के साथ प्रयोग करने की इच्छा, गलतियां मानना, सीखना।
हाँ, अपनी हिमालय जैसी भूल को स्वीकार करने का साहस था उनमें। ये दिखाता कि वो हमेशा सीखने को तैयार थे। उनमें गजब की विनम्रता थी।
अगर हम गुहा की किताब के आधार पर गांधी जी के जीवन के तीन सबसे निर्णायक मोड़ चुने जिन्होंने उनकी या देश की दिशा बदली, तो वो कौन से होंगे?
ये मुश्किल सवाल है, पर कोशिश करते हैं। पहला शायद मैं कहूंगा चौरी चौरा के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लेना।
अच्छा, वो क्यों?
क्योंकि इसने दुनिया को और शायद भारत को भी दिखाया कि गांधी के लिए अहिंसा का सिद्धांत किसी भी राजनीतिक लक्ष्य से कितना ऊपर है। इसने उनके नैतिक अधिकार को स्थापित किया, भले ही उस वक्त बहुत आलोचना हुई।
ठीक है, दूसरा?
दूसरा तो मेरे ख्याल से नमक मार्च ही होगा, 1930 का। इसने सत्याग्रह को एक ग्लोबल फिनोमेनन बना दिया, दिखाया कि कैसे एक नैतिक विचार को जन आंदोलन में बदला जा सकता है। उनकी रणनीतिक सोच का यह बेहतरीन उदाहरण था।
बिल्कुल सहमत। और तीसरा?
तीसरा शायद विभाजन के समय नोआखली में उनका वो अकेले शांति के लिए निकल पड़ना, 1946-47 का दौर।
हाँ, गुहा ने उसे फाइनेस्ट आवर कहा है।
हाँ, क्योंकि वो उनके जीवन का शायद सबसे मुश्किल दौर था। सब कुछ बिखर रहा था, लेकिन उस अंधेरे में भी वो अपने सिद्धांतों पर टिके रहे। ये उनके व्यक्तिगत साहस और नैतिक बल का प्रतीक है।
ये तीनों ही क्षण वाकई बहुत महत्वपूर्ण थे। अब अगर हम सोचें कि इन सब बातों से आज हम क्या सीख सकते हैं, गांधी की कहानी आज के दौर में क्या सिखाती है?
देखिए, नेतृत्व के स्तर पर तो सबसे बड़ा सबक है उदाहरण बनकर नेतृत्व करना। जो कहो वो करो, नैतिक जिम्मेदारी लो और बातचीत में भरोसा रखो।
हाँ, उनका जीवन दिखाता है कि असली ताकत सत्ता से नहीं, नैतिक अधिकार से आती है।
बिल्कुल, और सामाजिक बदलाव के लिए उनका रचनात्मक कार्यक्रम आज भी उतना ही जरूरी है। जमीनी स्तर पर काम करना, समुदाय को ताकत देना, आत्मनिर्भर बनाना, बदलाव सिर्फ नारों से नहीं आता, नीचे से काम करना पड़ता है।
आज जिस तरह का ध्रुवीकरण और नफरत का माहौल दिखता है दुनिया में, गांधी का रास्ता शायद और भी ज्यादा जरूरी हो गया है।
हाँ, उनका बहुलवाद में विश्वास, अलग अलग विचारों का सम्मान करना और नफरत का जवाब नफरत से नहीं बल्कि प्रेम और आत्मबलिदान से देना, ये रास्ता मुश्किल जरूर है पर शायद यही टिकाऊ रास्ता है।
गुहा उनकी मानवीय कमजोरियों को भी दिखाते हैं, कभी कभी उनकी जिद, उनके फैसलों का परिवार पर असर, कुछ बात के प्रयोग जो विवादास्पद रहे।
हाँ, और यही चीजें उन्हें ज्यादा मानवीय और विश्वसनीय बनाती हैं। महानता शायद परफेक्ट होने में नहीं है बल्कि अपने ऊंचे आदर्शों तक पहुंचने के लिए लगातार कोशिश करने में है और उस कोशिश में पारदर्शी रहने में है।
उनकी असफलताओं से सीखने की इच्छा भी तो उनकी महानता का हिस्सा थी।
बिल्कुल।
तो इस पूरी बातचीत के आखिर में अगर हमें तीन मुख्य बातें, तीन टेकअवेज निकालने हों गुहा की किताब से, तो वो क्या होंगी? एक भावनात्मक, एक बौद्धिक और एक सार्वभौमिक सीख।
पहली, भावनात्मक अंतर्दृष्टि। गांधी का सबसे गहरा दुख शायद भारत का धार्मिक बंटवारा था जिसे वो रोक नहीं सके, लेकिन उस भयानक नफरत और हिंसा के बीच भी उनका अकेला साहस नोआखली में, दिल्ली में, अंतिम अनशन में, वो ये दिखाता है कि प्रेम और आत्मत्याग में कितनी ताकत होती है, मुश्किल हालात में भी। ये एक बहुत गहरी भावनात्मक सीख है।
सही कहा।
और बौद्धिक अंतर्दृष्टि?
बौद्धिक रूप से गांधी का सबसे बड़ा योगदान सत्याग्रह की अवधारणा है। ये सिर्फ पैसिव रेजिस्टेंस नहीं था, ये सत्य की शक्ति, ट्रूथ फोर्स थी, एक सक्रिय, रणनीतिक और लगातार विकसित होने वाला तरीका जो सत्य की खोज, अहिंसक कार्रवाई और विरोधी का दिल बदलने पर आधारित था। ये एक पूरा दर्शन है संघर्ष समाधान का। और तीसरी, एक सार्वभौमिक सीख जो सबके लिए हो।
सबसे व्यवहारिक और सार्वभौमिक सीख शायद यही है कि लक्ष्य साध्य और से पाने के तरीके, साधन दोनों नैतिक होने चाहिए। और सच्ची आज़ादी, जिसे वो स्वराज कहते थे, वो सिर्फ बाहरी राजनीतिक आज़ादी नहीं है, बल्कि अंदरूनी आत्मनियंत्रण और नैतिक विकास भी है। ये संतुलन साधना, बाहर की दुनिया बदलना और खुद को भी बदलना, ये आज भी हर किसी के लिए ज़रूरी है।
वाकई गुहा की ये किताब गांधी को सिर्फ एक तस्वीर या नारे से निकालकर एक जीते जागते, सोचते, संघर्ष करते इंसान के रूप में हमारे सामने रखती है, और उनके सवाल, उनके तरीके आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। शायद यही उनकी असली प्रासंगिकता है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।